शांति। हमारे जीवन में परिवर्तन जब शब्द आता है, प्रगति जब शब्द आता है, तो हमारे मन बुद्धि का पूरा फोकस जो है, पूरी एकाग्रता स्वयं में हो जानी है। मुझे अपने आप को देखना है। प्रॉब्लम सब जगह से आ सकती है, लेकिन समाधान कहां से आएगा? समाधान कहां से आएगा? अपने से। बातें सब जगह से आएगी, लेकिन उसका निवारण कहां से होगा? कारण कहां से भी आएगा, निवारण कहां से होगा? तो मुझे कहां अपने मन को दिशा देनी है? अपने प्रति। वादी जी ने कहा कि जैसे घर में आईना भी होता है और खिड़की भी होती है, नहीं? दोनों में देखना होता है, लेकिन खिड़की से देखना बाहर होता है। आईने में जब हम देखते हैं तो किसको देख रहे हैं? स्वयं को। वादी ने कहा अभी स्व उन्नति की जहां बात आती है, स्व परिवर्तन की बात आती है, वहां खिड़की से देखना बंद कर दो। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होगा, उसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों हुआ, ये परिस्थिति क्यों आई, ये कैसे हुआ, अब ये क्या होगा, ये बाहर देखना बंद करना है। अपने आप को देखना है। आईने से देखना माना क्या? किसको देखना? अपने आप को। तो स्व के प्रति दिशा देना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में कौन है? हमारे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? कौन है? हम। और ये चीज हम भूल गए थे। यहां आपको अपने बारे में पहला परिचय मिला पहले दिन, नहीं? परमात्मा का परिचय भी दूसरे दिन था। फर्स्ट डे कौन सा परिचय मिला? अपने बारे में। क्योंकि जैसे हम अपने बारे में जानते हैं और अपने आप को महत्व देना आरंभ करते हैं, तो परमात्मा से भी समीपता महसूस करते हैं, क्योंकि वो हमारे जो ओरिजिनल स्व है, जिसको हम आत्मिक परिचय प्राप्त करते हैं, उससे उसका संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है। तो अपने बारे में सोचना या अपना महत्व महसूस करना सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में पर्सन जो है हमारे लिए हम हैं। तो जैसे हमने ये महसूस किया कि मुझे अपने जीवन के लिए जिम्मेवारी लेनी है और मैं बहुत महत्वपूर्ण हूं अपने लिए, तो ऑटोमेटिकली अपने लिए समय देना आरंभ हो जाएगा। तो जो भी बातें हमने सुनी है उसको क्या करना है? अभी अपने साथ बातचीत करके उसको अपने लिए, अपनी प्रगति के लिए, अपनी उन्नति के लिए धारण करना है, महसूस करना है। तो अब तक हमारा अटेंशन अपने प्रति बहुत कम था कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, हमारी बुद्धि किस दिशा में जा रही है, क्या निर्णय ले रहे हैं, हम किस रूप से बातचीत कर रहे हैं, हम किस रूप से व्यवहार कर रहे हैं, हम किन स्मृतियों को लेकर सारा दिन कार्य कर रहे हैं। अब हमारा केंद्र बिंदु स्वयं हो जाता है ना? हम एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है? आप यहां तीन दिन से हैं, आप आंखें बंद करिएगा, सिर्फ आप मुझे रिस्पॉन्ड करिएगा। तीन दिन से हैं, तो आप इस हॉल में कौन सी चीजें हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण है इस हॉल में, वो याद कीजिए, आंखें बंद रखिएगा।
मेरा फोकस स्टेज पे था।
स्टेज पर था, हाँ। और क्या है?
और तो चेयर्स हैं।
चेयर्स हैं, बहुत अच्छा।
दरवाजे हैं।
दरवाजे हैं जी। और
ये वीडियो अरेंजमेंट है,
हमारे भाई और सारा इक्विपमेंट जो है।
सामने बैकड्रॉप में बाबा की मूर्ति और बिंदु है,
मूर्ति है ब्रह्मा बाबा की और शिव बाबा की जी। और बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। ताली तो बजाइए उनके लिए। आंखें खोल सकते हैं अभी, ब्रदर आंखें खोल दीजिए। ये सारे हमारे फ्रेंड्स हैं और मैं हूं, क्योंकि हम इन सब चीजों को तब महसूस कर सकते हैं जब हम यहां है ना। हम हॉल में नहीं है तो हम ये सारी चीजें जान सकते हैं, जागृत हो सकते हैं। लेकिन जब ये एक्सरसाइज मैंने पहली बार किया ना, तो मैंने तो भाई साहब के जैसे ही कर लिया। मैंने भी बहुत सारी बातें बताई, लेकिन अपने बारे में नहीं बताया। क्यों? हम में से कोई भी मोस्टली एक्सरसाइज करेगा तो यही रिजल्ट होगा। क्यों? क्योंकि सारे जीवन में हम अपने प्रति बहुत कम जागृत रहे। अपने प्रति जागृत भी रहे तो अपने कार्य के लिए, परिवार के लिए, जिम्मेवारियों के लिए, अपने शरीर के लिए। लेकिन अब तो हमने अपना सत्य परिचय प्राप्त कर लिया कि हम कौन है, शरीर को चलाने वाली आध्यात्मिक शक्ति आत्मा है। और वो भी कैसी आत्मा है? हमारे ओरिजिनल गुण भी हमने महसूस किए, परमात्मा की संतान के रूप में उसकी जो विशेषताएं गुण और शक्तियां हैं वो मेरे हैं, ठीक है। तो अब ये परिचय प्राप्त किया, तो ये परिचय में सारा दिन रहकर कर्म करना, अब इसको धीरे धीरे हमें जीवन शैली के रूप में बनाना होगा। लेकिन इस परिचय के प्रति हम जागरूक ही नहीं थे, हम जानते ही नहीं थे, तो हमने अपने बारे में कभी नहीं जाना ना उसको महसूस किया। इसलिए हम देखते हैं कि जो अपनी स्व उन्नति की बातें हैं, स्व परिवर्तन की बातें हैं, उसके बारे में न चिंतन किया न जीवन में उसको धारण करने का कभी लक्ष्य रखा। तो स्वयं को जानना या स्वयं के बारे में महसूस करना, जैसे हम देखते हैं कि अगर आप विलेज में जाते हैं तो वहां ये बुलक काट जो है उसमें जो व्हील देखते हैं, जो चाक है, उसके बीच का जो हिस्सा है जिसको धुरी कहते हैं, तो धुरी की विशेषता क्या होती है, वो सेंटर में है और इस चाक का वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों, उसकी क्या विशेषता है, वो होल्ड करके रखता है। और उसकी विशेषता है कि वो एक ऐसा धातु का बना है, मेटल का है, जो बहुत मजबूत होता है और स्थिर रहता है, स्थिर भी है मजबूत भी है, क्योंकि उसका रोल क्या है कि वो सारे ही चाक को सपोर्ट करता है। अगर ये धुरी हिलना शुरू कर दे तो क्या होगा, क्या होगा, पहले तो चाक की जो गति है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और फिर थोड़े समय के बाद अगर ये हलचल जो है हिलना और भी कंटिन्यू हुआ तो क्या होगा, चाक बाहर। तो हमारे जीवन की धुरी क्या है, हमारे जीवन की धुरी क्या है, आत्मा और आत्मा में मन की स्थिति, और ये मन की स्थिति को शांत, सकारात्मक, स्थिर, शक्तिशाली, समर्थ रखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये अगर हलचल में आए तो क्या होगा, सुबह से रात तक हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम क्या सोच रहे हैं, नहीं, ये सोच ही नहीं चला। और जैसे हम इसको महसूस करते जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो हलचल की अवस्था है अगर वो स्थायी रहती है, बहुत समय तक रहती है, तो पहले तो हमारे जीवन में हर परिस्थिति को जो प्रतिक्रिया हम करते हैं ना, हर प्रकार की समस्या का जो समाधान करते हैं, जीवन के अनेक प्रकार के जो विघ्न आते हैं उसको जो हम उत्तर देते हैं या जो अनेक कारण है उनका निवारण करते हैं, उसकी जो गति है ना वो बहुत धीमी होती जाती है। कोई परिस्थिति में हम समाधान कर पाते हैं, कोई नहीं, कहां सकारात्मक प्रतिक्रिया है, कहां हम रिएक्ट करते हैं। और कुछ समय तक अगर ऐसी मन की हलचल की अवस्था, शांत अवस्था, परेशान अवस्था, कंफ्यूजन की अवस्था, तनाव की अवस्था ही कंटिन्यू हो तो फिर क्या होगा, कहां ना कहां हमारे जीवन के कोई पहलू पर उसका प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, संबंधों पर प्रभाव पड़ता है, कारोबार पर प्रभाव पड़ता है, पड़ता है, पड़ता है। फिर हमें रियलाइज होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, डॉक्टर्स भी हमारे साथ बैठे हैं, तो डॉक्टर फिर हमें कहते हैं कि अरे मन को क्या करो, रिलैक्स रखो, शांत हो जाओ, स्ट्रेस नहीं लो, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, उसका संबंधों पर असर पड़ता है। तो हम देखते हैं कि स्वयं में ये आंतरिक रूप में शक्ति और शांति का अनुभव करना, तो ये कब होता है, जब हम, जैसे हमने यहां देखा, आपने ये राजयोग के द्वारा समझा कि ये हमारा ओरिजिनल स्वभाव है, तो परमात्मा की याद से हम आत्मा का जो ये ओरिजिनल स्वभाव है ना, ये धीरे धीरे जागृत होता जाता है, ये हमारे लिए एक जीवन शैली का स्वरूप ले लेता है, और ये जीवन शैली हमारे अंदर फिर महसूस होती है कि ये शक्ति जो है, अंतर के जो गुणों की शक्ति है, वो एक स्वभाव के रूप में जागृत होती जाती है। तो पहला गुण जो आत्मा का निज स्वभाव है वो शांति, और जैसे ये शांति की अनुभूति हमारे स्वभाव में परिवर्तित होती जाती है, आज भी हम शांत रहते हैं, हमारे मन में शांति की अनुभूति रहती है, लेकिन सुबह से रात्रि में कुछ जीवन के पल है जहां हमारा मन थोड़ा रिलैक्स होता है, थोड़ा लाइट होता है, थोड़ा शांत होता है, लेकिन जैसे ये शांति मेरा स्वभाव बनती जाएगी, नेचुरल रूप से सुबह से रात्रि तक हम रिलैक्स रहेंगे तो क्या होगा, इसका हमारे संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, संबंध कैसे होते जाएंगे जी? सकारात्मक संबंध होंगे। कोई हमारे साथ बातचीत ठीक नहीं भी करेगा तो भी हमारे अंतर की मनोस्थिति बहुत शांत है तो क्या होगा? हम शांत रहेंगे, हम रिएक्ट नहीं करेंगे। और जैसे हम शांत रहते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी थोड़े समय के बाद क्या हो जाता, क्योंकि रिएक्शन नहीं मिलता है तो क्या है, थोड़े समय के बाद उसको भी शांत रहना ही पड़ता है, नहीं? क्योंकि सामने से तो उसको कोई भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। कारोबार में जब हम अंतर से शांति की अनुभूति है तो कारोबार में क्या होता, कारोबार भी हमें करना है ना सुबह से रात तक, घर का कारोबार है, ऑफिस का कारोबार है जी, अच्छा ध्यान दे सकेंगे। और हम सुबह को जैसे पहुंचते हैं तो हमें प्लानिंग करनी है, हमें कारोबार में क्या आज सारा दिन करना है उसकी योजना बनानी है। तो जितना हम अंतर से शांत रहते हैं, शांति का गुण और शांति की शक्ति हमारे अंदर धारण होती जाती है तो एकाग्रता बढ़ती, स्पष्टता बढ़ती जी, डिसीशन लेने की। क्योंकि जैसे हमारा मन शांत रहता है ना तो नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प की गति कम हो जाती है। नेगेटिव तो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, व्यर्थ चिंतन भी कम होता जाता है, तो हमारे संकल्प क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड होते जाते हैं, हमारी ऊर्जा भी कॉन्सेंट्रेटेड होती जाती है। और इसलिए जितना मन शांत है, कम विचार है, तो क्या होगा, परख शक्ति निर्णय शक्ति बढ़ जाती। जैसे दो पेज आपके सामने रखे गए हूं, एक पेज में बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, पूरा पेज भरा हुआ है शब्दों से, दूसरे पेज में सिर्फ चार शब्द हैं। आपको कहा गया कि इन दोनों पेजेस में से ए अल्फाबेट या अ अक्षर कितनी बार रिपीट किया है, सपोज हिंदी है तो अ, इंग्लिश है तो ए, आप बताइए तो कौन सा सहज हो जाएगा, कौन सा पेज सहज हो जाएगा? क्यों, आप राइट हैं लेकिन क्यों कम? तो जितने कम अक्षर कम शब्द उतनी हमारी परख शक्ति निर्णय शक्ति ज्यादा, क्योंकि कम जानकारी है ना तो उसका तुरंत विश्लेषण करके आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो मन में भी सारा दिन अगर कम संकल्प चल रहे हैं, व्यर्थ समाप्त हो गया, नकारात्मक समाप्त हो गया, व्यर्थ कभी कभी है चलो लेकिन कम है, तो संकल्प कम है, गति भी धीमी है, तो क्या हो जाएगा, हमारी परख शक्ति निर्णय शक्ति बढ़ जाएगी। और फिर शांति की मनोस्थिति से हमारी फ्रीक्वेंसी ईश्वर के साथ मैच करना सहज हो जाता है, कि वो तो शांति का सागर है। तो फिर उसकी समझ, उसकी ज्ञान के आधार से हमारे मन और बुद्धि को दिशा मिलती, जिसको हम कारोबार में इंट्यूशन या प्रेरणा कहते हैं। इंट्यूशन से हम कार्य कर पाएंगे, प्रेरणा से हमें ईश्वर की शक्ति या समझ हमें मदद करती। तो हम देखते हैं ये शांति एक नेचुरल स्वभाव बन जाता है, क्योंकि ये आत्मा का भी गुण है और परमात्मा की याद से हमारा जो ये नेचुरल स्वभाव है वो और मजबूत बनता जाता है। दूसरा गुण हम देखते हैं स्नेह। तो जैसे स्नेह का स्वभाव नेचुरल बनता जाता है, अपने प्रति स्नेह पहले तो, और अपने कौन से स्व के साथ स्नेह, अपने नेचुरल स्वरूप के साथ स्नेह, हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है उससे स्नेह, उसके प्रति जागृत कि हम परमात्मा की संतान है तो हम बहुत सुंदर हैं, श्रेष्ठ हैं, शुद्ध हैं, अपने प्रति जो स्वमान की महसूसता है, अपने प्रति जो श्रेष्ठता की महसूसता है, तो अपने साथ स्नेह। दूसरा औरों के साथ, चाहे परिवार के सदस्य हैं चाहे कारोबार है उनके साथ स्नेह। तो ये जो स्नेह का गुण है, जैसे ये नेचुरल स्वभाव बनता जाएगा तो इसका हमारे मनोस्थिति पर, संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? परिवार में कभी ना कभी ऐसा कोई व्यक्ति कुछ हमें कह देता है जो हमें पसंद नहीं है, नहीं होता है? होता है, हमने कोई कुछ रिक्वेस्ट किया या हमने कुछ कहा ये करना है आपको, ये करना चाहिए, और वो व्यक्ति ने वो नहीं किया, ऐसा होता है? या अप्रिय कुछ चीज किया उन्होंने, होता है? तो उस समय हम किस रूप से प्रतिक्रिया देंगे? अगर स्नेह है तो, स्नेह की शक्ति है तो प्यार से समझाएंगे, और जी पेशेंस, धीरज रखेंगे, उनकी मनोस्थिति समझेंगे, उनका व्यू पॉइंट क्या है, उसको एक्सेप्ट करके फिर उनको विचारों से दिशा देंगे। तो सहन शक्ति नेचुरल हो जाएगी, रिएक्ट नहीं करेंगे। तो इसमें नेचुरल स्वरूप हो जाएगा, तब हमारी हर एक के प्रति गुण ग्राहक दृष्टि रहेगी और उनके प्रति वो शुभ कामनाएं नेचुरल रहेगी। आज हमारा स्नेह है लेकिन अनकंडीशनल स्नेह और अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं है। जब कोई व्यक्ति हमारी बात एक्सेप्ट कर रहा है, समझ रहा है, हमारी बात को रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो स्नेह जागृत रहता है। और जैसे उन्होंने हमारी बात को स्वीकार नहीं किया या उसको उस बात को कोई अपनी और कोई बात से कुछ अगेंस्ट कहा, तो क्या हो जाता, फिर वो स्नेह जागृत रहता है, फिर उस समय हम शांत रह पाते हैं, धीरज रख पाते हैं। नहीं, हमारे सबसे प्रिय संबंध भी होंगे, बहुत नजदीक के समीपता के बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, माता पिता है, लेकिन वहां भी रिएक्शन आ जाता है। तो स्नेह जो है उसके साथ हरेक के प्रति शुभकामनाएं और अंतर में जो कंसर्न है, केयर है, जहां उनके विशेषताओं को हम देख पाएंगे, और एक नेचुरल हमारा स्वभाव रहेगा, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस भी रहेगा, हम उनको जैसे हैं वैसे स्वीकार कर सकेंगे और उनके गुणों के आधार से उनके प्रति वो स्नेह की दृष्टि कायम रख सकेंगे। क्योंकि हम भी अपनी यात्रा में हैं परिवर्तन के, तो हम महसूस करते हैं कि उनकी भी कुछ ना कुछ तो कमजोरियां हैं, हम उन्हें मदद करेंगे उस परिवर्तन की यात्रा में। तो ये स्नेह की शक्ति जागृत हो जाएगी। तीसरा हम देखते हैं कि हमारे अंदर खुशी जो है, अपने जीवन के प्रति जो खुशी की अनुभूति है, जो हर दिन हम सुबह उठते हैं तो हमें महसूस करें, हम महसूस वो करें कि ये हमारा नया एक दिन है इस जीवन के लिए, वो खुशी हमारी रहे। नहीं? हम खुश रहते हैं लेकिन क्या हम सदा खुश रहते हैं? इस समय आप अपने आप से पूछें। खुश तो हम 100% रहते हैं क्योंकि वो तो हमारा स्वभाव भी है और हमें अच्छा लगता है, हम बहुत सारे अच्छे कार्य कर रहे हैं तो उससे हमें खुशी मिलती है, अच्छे लोगों के साथ हम संपर्क में आते हैं हमें खुशी मिलती है, अच्छे स्थान पर हम पहुंचे हैं खुशी है, लेकिन क्या हम सदा खुश रहते हैं? तो हम देखते हैं कि ये आध्यात्मिक ज्ञान से, राजयोग से वो खुशी एक नेचुरल स्वभाव बन जाती, खुश रहने की शक्ति और समझ हमारे अंदर समा लेती, और उसके वजह से हर सेकंड अपने जीवन में क्या होगा, जहां खुशी है वहां क्या होगा, उमंग उत्साह चेहरे पर क्या होगा। जो व्यक्ति खुश है तो उसको मैं खुश हूं कहना पड़ता है या उसका चेहरा बताता है कि वो खुश है? आप महसूस करते होंगे कि यहाँ जो भी आसपास हमारे सभी समर्पित भाई भी हैं, उनसे जो भी सेवाएं जो दे रहे हैं, कई तो गुप्त रूप में सेवाएं दे रहे हैं, कई दिखाई भी देते हैं, तो सभी के चेहरे पर आप क्या देखेंगे, हमेशा वो खुशी, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा और वो शांति की अनुभूति। तो वो नेचुरल नेचर बनने की वजह से अंदर से वो दिखाई देती, और अगर अंदर से खुशी नहीं है तो अंदर से खुशी न होते हुए भी अगर हम मुस्कुराते हैं तो अंतर महसूस होता है, महसूस होता है। कभी आप फ्लाइट पे जाते हैं तो वो एयर होस्टेस स्माइल करते हैं तो अंतर महसूस होता है, क्योंकि आंखों में वो खुशी नहीं दिखाई देती, मुस्कुराहट जरूर है चेहरे पर लेकिन आंखों में खुशी नहीं। तो जहां खुशी एक स्वभाव बन जाती है हमारे जीवन का, क्योंकि ये नेचुरल नेचर के रूप में हम महसूस करते हैं, दुख लेने का या दुख देने और लेने के कारण जो है वो समाप्त हो जाते हैं जीवन में, आध्यात्मिक ज्ञान की समझ मिल जाती है, तो दुख लेना और दुख देना ये दोनों उसके लिए कोई कारण नहीं महसूस मिलते, कोई उसके लिए हमें जरूरत नहीं महसूस होती है। तो हमारी वो आध्यात्मिक ज्ञान की समझ इस खुशी को जीवन शैली बना देती है। तो चीयरफुलनेस अर्थात प्रसन्न चित्त, अंतर से हम रहते हैं, और फिर जीवन में नवीनता, हर दिन एक आनंद का दिन, हर दिन कुछ नया सीखना, कुछ नया एंजॉय करना, प्रकृति है, जीवन की हर परिस्थिति भी हमें कैसे आगे बढ़ा रही है, खुशी है तो हम हर परिस्थिति को और हर संबंध में हर अनुभव को अपने प्रगति के महसूसता करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। और जो खुश नहीं है उसको जीवन की हर बात में परेशानी, नेगेटिविटी दिखाई देती, नहीं दुखी रहने का भी कई कारण ढूंढ लेते हैं। कई समझते हैं कि दुख इसलिए होता है, कई लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि उनके जीवन में सचमुच कोई दुख का कारण है, कई लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि कोई और दुखी है, उनके परिवार के कोई और सदस्य जिनके साथ उनका बहुत स्नेह है वो दुखी है, लेकिन कई आज जीवन में इसलिए दुखी हैं क्योंकि दूसरे सुखी हैं, नहीं? तो हम देखते हैं कि आज हमने कोई ना कोई कारण ढूंढ लिया है दुखी रहने का, लेकिन राजयोगी जीवन से ये नेचुरल रूप में आपके अंदर खुशी स्वभाव के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। और फिर हम चौथी बात देखते हैं कि शक्ति, क्योंकि ये चीजें हो लेकिन शक्ति साथ में आवश्यक है, क्योंकि ये चीजों को कायम रखने के लिए शक्ति चाहिए। तो जैसे आत्मा परमात्मा की याद से वो अंदर अपने बल भरती जाती है, शक्ति भरती जाती है, तो दृढ़ता नेचुरल बन जाती है। जो भी हम शुद्ध संकल्प अपने प्रति या औरों के प्रति या अपने जीवन के प्रति या कारोबार के प्रति जो भी शुद्ध संकल्प मन में आते हैं उसको धारण करने के लिए, उसको प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करने के लिए दृढ़ता आ जाती। जो हमने सोचा वो हम करना आरंभ करते हैं। अभी तक हमने सोचा बहुत कुछ अच्छा है, समझा भी बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन जो हम कर रहे हैं, जो हम समझते हैं और जो हम करते हैं, दोनों चीजों में अंतर है, अंतर है। हम समझते हैं कई चीजें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम जानते हैं उसके बारे में, हम दूसरों को समझाते भी हैं, नहीं? हम अपने परिवार में स्पेशली बच्चों को समझाते हैं ना, रोज उनको शिक्षा भी देते हैं। तो हम देखते हैं कि उनको समझाते भी औरों को, और औरों को हमारी समझ से मदद भी मिल जाती है, लेकिन हमारे जीवन में गैप दिखाई देता है कि जो हम समझते हैं और जो हम करते हैं उसे बीच में अंतर दिखाई पड़ता है। तो जैसे हम ये अभ्यास करते जाते हैं, जीवन शैली बनती जाती है इस रूप से, आध्यात्मिकता से, तो ऑटोमेटिकली ये दृढ़ता जो है वो स्वभाव बन जाता है, जिससे ये गैप जो है ये गैप कम होता जाएगा। जो आप समझेंगे महसूस करेंगे वो आप जीवन में धारण करना आरंभ करेंगे, वैसा जीवन जीना आरंभ करेंगे। और फिर उससे क्या होता है, हमें बहुत अंदर से और बल मिलता जाता है। और फिर हम जब वो बातें वर्णन करेंगे, दूसरों को समझाएंगे, तो क्या होगा, जो चीज हम कर रहे हैं उसके बारे में जब दूसरों को समझाएंगे तो क्या होगा, एक तो जब हम करना शुरू करते हैं तो फिर किसी को समझाने की आवश्यकता रहती नहीं, नहीं वर्णन करने की आवश्यकता रहती है, आत्मिक बल भर जाता है। और हमारे शब्दों में भी क्या होगा फिर जी, प्रेम आता है, मिठास आती है, और उस शब्दों का इंपैक्ट क्या पड़ता है, कन्विंसिंग हो जाता है जी, उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लोग जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं वो हमारे में वो चीज देखते हैं, सीइंग इज बिलीविंग कहते हैं, वी वॉक आर टॉक, हम जो बोल रहे हैं वो हम कर रहे हैं, हमारा सोचना हमारा बोलना हमारा करना तीनों में वो समानता दिखाई देती है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो भी बोल है उसमें वो प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, वो बोल औरों को फिर शक्ति दे सकते हैं। तो हम भी शक्तिशाली बन रहे हैं, हम भी जीवन में धारण कर रहे हैं, लेकिन हम अपने शब्दों के द्वारा, अपने उपस्थिति के द्वारा, अपने सहयोग के द्वारा औरों में भी बल भर सकते हैं। बोल और उनको फिर शक्ति दे सकते हैं। तो हम भी शक्तिशाली बन रहे हैं, हम भी जीवन में धारण कर रहे हैं, लेकिन हम अपने शब्दों के द्वारा, अपने उपस्थिति के द्वारा, अपने सहयोग के द्वारा औरों में भी बल भर सकते हैं। और इस समय हम देखते हैं आत्मिक बल की बहुत बहुत आवश्यकता है ना। आसपास आप देखें, चाहे आप बच्चों को देखें, चाहे आप अपने मित्र संबंधियों को देखें, शुभ संकल्प उनके मन में जरूर है, सत्यता क्या है ये समझ जरूर है, लेकिन उसको धारण करने की शक्ति नहीं है। तो बल की आवश्यकता है, वो हिम्मत की आवश्यकता है। तो जैसे हमारे अंदर वो शक्ति धारण होती जाएगी, तो वो हम औरों को भी शक्तिशाली बनाते जाएंगे। जो हिम्मत जो है वो नेचुरल बनती जाएगी, और हमारे एक कदम हिम्मत से फिर क्या होगा, हमें व्यक्तियों का भी साथ मिलेगा, हमें परिस्थितियों का भी साथ मिलेगा, और उनके पीछे ईश्वर का साथ समाया हुआ होगा। तो एक कदम सिर्फ हिम्मत का हमें आगे लेना है, लेकिन ये गुणों को हम नेचुरल स्वभाव फील करेंगे। इस समय जैसे ये गुण और शक्ति, इनके प्रति प्रेरणा महसूस होती है, लेकिन लगता है कि नहीं, ये मेरा स्वभाव बन सकता है क्या, ये नेचुरल रूप में रहेगा क्या, ये सदा रह सकते हैं? नहीं। जीवन के कई पल हैं जहां हम शांत नहीं हैं, जीवन के कई पल हैं जहां हम अंदर से वो खुशी नहीं महसूस कर रहे हैं, जीवन के कई पल हैं या कई लोग हैं जिनके प्रति स्नेह नहीं महसूस होता है, जिनके प्रति कुछ थोड़ा थोड़ा भावनाएं चेंज हो जाती हैं, अंतर में शक्ति नहीं महसूस होती, हिम्मतहीनता महसूस होती। तो ऐसे सारे दिन के जो महसूसता है वो कम होती जाएगी। ऐसे नहीं कि परिस्थिति नहीं आएगी, लेकिन ये हमारा नेचुरल स्वभाव है, ये महसूस होगा। तो हम देखते हैं कि परिवर्तन के प्रति हमारा लक्ष्य जो है वो उस रूप से हो जाएगा जहां हम अपने जीवन में जो परिवर्तन हमारे अंदर लाना है उसके प्रति का लक्ष्य क्लियर होगा। हमें क्या बनना है, किस रूप से वो परिस्थिति और व्यक्तियों के साथ डील करना है, वो स्पष्टता होगी। लक्ष्य माना यही नहीं कि हम ये बनना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं, ठीक है हम राज्यों का अभ्यास करेंगे, हम अपने जीवन को शांतमय सुखमय बनाएंगे, वो लक्ष्य तो 100% है, लेकिन हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ किस रूप से अभी हम डील करेंगे, वो विजन जो है, वो एम जो है, वो क्लियर होगा। अभी यहां से जाने के बाद फिर वही कारोबार में आएंगे, लेकिन इस बार जब कोई बात ऐसी आएगी तो हम कैसे डील करेंगे, कोई व्यक्ति अगर हमारी बात नहीं मानेगा तो हम कैसे उनसे बातचीत करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में, बिजनेस में आप निर्णय ले रहे हैं, आप नेतृत्व कर रहे हैं, वहां आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, उन्होंने नहीं माना, एक बार दिया, दो बार दिया, तीसरे बार दिया, फिर भी नहीं माना, हम उसको कैसे डील करेंगे। वो एम, वो विजन स्पष्ट होना चाहिए, वो विजन क्लियर होना चाहिए। हम परिवार में हैं, हमें लगता है कि हमारे बच्चे के साथ थोड़े संबंध में कई बार अनबन हो जाती है, हम बच्चे को कुछ कहते हैं उसको नहीं पसंद आता है, वो रिएक्ट करता है, वो कुछ बात मानता है कुछ बात नहीं मानता है, कुछ उसका ऐसा स्वभाव है जो हम बदलना चाहते हैं। तो फिर से हम जब संपर्क में आएंगे, अब फिर से वो वही स्वभाव से हमारे साथ व्यवहार करेगा या वही स्वभाव से अपने जीवन में कुछ न कुछ गलत करेगा, अलबेलापन होगा, तो मैं कैसे उसके साथ डील करूंगी, तब मैं उससे क्या बातचीत करूंगी। अच्छा, तो वो हमें एम अपने साथ विजुलाइज करना है, वो विजन तैयार करना है कि मुझे अब कैसे डील करना है। तब प्रैक्टिकल, जब तक उसको विजन हमने नहीं दिया ना, उस गुण को, उस शक्ति को जो आपने यहां समझा है, धारण किया है, उसको प्रैक्टिकल आपने विजुलाइज नहीं किया ना, तब तक ये चीजें आपके जीवन में नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये एम बार बार रोज आपको अपने लिए एम सामने रखना होगा कि आज सारे दिन में कारोबार में मुझे ऐसा रहना है, संबंधों में मुझे ऐसा रहना है, स्वास्थ्य के लिए मुझे इस रूप से जागृत रहना है, स्वास्थ्य में आपको लगता है कि हाँ आपको इतना समय अपने वॉक के लिए देना है, आपको भोजन में ये चीजें अवॉइड करनी है। आप जानते हैं आज आपके ऑफिस में कोई गेट टुगेदर है तो वहां अलग अलग प्रकार की चीजें होंगी, लेकिन मुझे ये ही खाना है, वो ही खाना है, ये नहीं खाना है, ठीक है। तो वो एम जो है, एक जनरल एम तो है ही आपको, लेकिन प्रैक्टिकल में एवरी डे एक एम अपने पास जरूर होना चाहिए, वो विजन जरूर होना चाहिए, उसको विजुअलाइज जरूर करें, तब क्या होगा, हमारा उसके प्रति चिंतन चलेगा, तब हम अपनी भावनाओं को उस दिशा में मोड़ सकेंगे और उसमें फिर उमंग उत्साह होगा कि इस रूप से मुझे करना है। और फिर जो उमंग उत्साह होगा उसमें समझ आती जाएगी, अभी उसको करना कैसे है, तो यहां जो आपने समझ प्राप्त की, लेकिन हमको ये समझ रोज अपने अंदर जागृत करना है। बीज तो डाल दिया आज मैंने, कल मुझे फल मिल जाएगा? आज मैंने बीज डाला, पानी भी डाल दिया, धूप भी है, तो कल मुझे फल मिलना चाहिए ना, कल फल मिलना चाहिए ना? नहीं, धीरे धीरे, क्यों कल नहीं मिलना चाहिए फल? कल तो मैंने बीज डाल दिया और बहुत मेहनत की मैंने, तो आज तो फल मिलना चाहिए ना, या आज अगर बीज डाला तो कल जो आने वाला कल है वहां तो फल मिलना चाहिए ना? नहीं नहीं जी, समय लगेगा, तो मुझे क्या करना है तब तक? हर दिन मुझे क्या करना होगा उस बीज को? हर दिन पानी डालना होगा, हर दिन उसको धूप मिलनी चाहिए, हर दिन मुझे उसकी संभाल करनी होगी। अगर मैं देखती हूँ कि वहां मिट्टी आदि जो है उसमें जो मैन्योर चाहिए वो सब नहीं है, तो फिर वापस उसमें खाद डालनी होगी, कुछ कीड़े लग गए हैं तो उसकी भी संभाल करनी होगी, तब जाके कुछ समय के बाद फल दिखाई देंगे, तब उसमें उसका जो स्वरूप, संपन्न स्वरूप है फल का, वो दिखाई देगा। ऐसे ये बातों का बीज तो आज आपने डाल दिया ये तीन चार दिनों में, अब जैसे आप जाएंगे तो तुरंत परिवर्तन दिखाई देगा, तुरंत आपके बिहेवियर में सब कुछ चेंज दिखाई देगा, शायद एक दिन दिखाई भी देगा, दूसरे दिन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, नहीं? तो रोज क्या करना पड़ेगा, बीज को रोज पानी डालना पड़ेगा, रोज उसको समय देना होगा, नहीं? तब जाके धीरे धीरे वो बीज से बहुत सुंदर एक हमारा बगीचा तैयार हो जाएगा, नहीं? तो इसलिए रोज उसको पानी देने के लिए रोज हमें इस आध्यात्मिक ज्ञान की समझ और रोज परमात्मा की याद की शक्ति, ये दोनों बहुत आवश्यक है। इसलिए यहाँ ब्रह्मा कुमारीज को एक ईश्वरी विश्वविद्यालय का नाम दिया हुआ है, यहाँ भी बाहर एकेडमी लिखा हुआ है, पूरा जो हमारा नाम है उसमें भी आप देखेंगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय, ईश्वर द्वारा स्थापन किया हुआ विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय माना रोज, विश्वविद्यालय में क्या होगा, रोज क्या होगा, पढ़ाई, तो यहाँ हम रोज पढ़ते हैं, नहीं? तो आप बहुत आनंद प्राप्त करेंगे कि इतना सुंदर ईश्वर विश्वविद्यालय है जहां रोज आप स्टूडेंट लाइफ एंजॉय करेंगे, नहीं? स्टूडेंट लाइफ कितनी एंजॉयबल थी, आप सबको याद आता है, जब आप पढ़ते थे तभी शरीर की जब आयु छोटी थी और पढ़ते थे उस समय हमारे जीवन में कितना आनंद था, मनोस्थिति कैसी थी, बिल्कुल फ्री, नहीं? स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ कहते हैं। तो परमात्मा हमको एक गॉडली स्टूडेंट के रूप में रोज ईश्वरीय ज्ञान की समझ से हमारी बुद्धि को दिशा देता है, हमारे बुद्धि को, हमारे जीवन को रोज ज्ञान का श्रृंगार देता है, और फिर रोज परमात्मा की याद से हमें और बल मिलता जाता है, जिससे वो ज्ञान को हम फिर डे टू डे लेवल में अपने सारे दिनचर्या के लिए फॉलो करेंगे। तो जो एम है ना, वो रोज आपको मिल जाएगा स्वतः ही, एवरी डे जो रेगुलर आप सेंटर पर जाएंगे, उसके बाद आपका जो बाकी का कोर्स, थोड़ा कुछ सेशंस बाकी है वो पूरा करके, जब आप रोज ये स्पिरिचुअल स्टडीज सुनेंगे ना, जिसको हम आध्यात्मिक रूप में शब्द कहते हैं कि ज्ञान की मुरली है, तो रोज आपको प्रेरणाएं उससे मिलेगी, फिर वो बीज को रोज पानी मिलेगा, उसको धूप मिलेगा, रोज पानी मिलेगा, धूप मिलेगा, तब वो सहज धारणा आती जाएगी। तो इसलिए रोज इसको अपने जीवन में धारण करने के लिए समय देना आवश्यक है। जैसे बॉम्बे में, जो बॉम्बे में आए हैं, ट्रैवल करते हैं, आप जानते हैं कि वहां लोकल ट्रेन्स जो पीक आवर्स होते हैं उसका क्या स्वरूप होता है, बहुत रश रहता है ना, तो उसमें आना जाना करना, ट्रैवल करना, उसमें एक्सपर्टीज चाहिए, नहीं? साधारण रूप में आप ट्रैवल नहीं कर सकते, नया व्यक्ति हो तो क्या होगा, उसको एंटर करना भी मुश्किल है, नहीं? और अगर अंदर वो है तो उसको जगह पर समय पर बाहर स्टेशन राइट स्टेशन पर निकलना डिफिकल्ट होगा. लेकिन वहां आप बहुत सुंदर जिनको रेगुलर प्रैक्टिस है वो क्या करते हैं पता है, जब वो लोग एंटर करते हैं ट्रेन में लोकल ट्रेन में तो वो अपने आप को ऐसे स्थान पर ग्रुप के अंदर खड़ा कर देते हैं जो क्या होता है जैसे ट्रेन स्टॉप होता है वो पूरा जो मॉब है अंदर जाता है तो वो बाहर उनके आसपास के लोगों के प्रेशर से ऑटोमेटिकली क्या होता है कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता आराम से अंदर चले जाते हैं. और उतरते समय भी क्या है वो अपने आप को ऐसे स्थान पर पोजिशन कर लेते हैं कि जैसे ट्रेन स्टॉप होती है तो वो पूरा जो मॉब है उसके साथ ऑटोमेटिकली समय पर और सही स्टेशन पर उतर जाते. तो रोज जब आप सेंटर पर जाएंगे ना वहां आपको एक बहुत सुंदर संगठन मिलेगा जिसको हम कहते हैं ईश्वरीय परिवार. तो ये सभी जो है आपके जैसे ही गृहस्थ में रहकर अपने कारोबार में रहकर रोज इस आध्यात्मिक ज्ञान को सुन रहे हैं और अपने जीवन में धारण कर रहे हैं. तो वो जो संगठन में वातावरण में बैठकर आप ये ज्ञान सुनेंगे समझेंगे और उनके साथ क्लास के बाद कुछ बातों को शेयर करेंगे अनुभव सुनेंगे तो आपके अंदर धीरे 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 ये ज्ञान की बातें स्वरूप में आती जाएगी. ऑटोमेटिकली वो संगठन की मदद मिलेगी जैसे वो ट्रेन में चढ़ने में मदद मिलती है ना तो यहाँ भी जीवन में आगे धीरे धीरे चलने में ये संगठन की बहुत मदद मिलती है जिसको हम ईश्वरीय परिवार दैवी परिवार कहते हैं. एक दूसरे को देखने से और एक दूसरे के प्रति शुभ भावनाएं जो रखते हैं उससे बहुत अंदर में नई प्रेरणाएं डे टू डे लेवल पर अपने अंदर मुझे क्या क्या और धारण करना है वो समझ मिलती जाएगी वो उमंग उत्साह मिलता जाएगा. क्योंकि कहां ना कहां थोड़ा आपके मन में ये जरूर आता होगा कि जो यहां समर्पित भाई है जो बहने हैं उन्होंने तो ये जीवन बना लिया है उनके लिए सहज है क्योंकि फिर भी उनकी दुनिया अलग है हमारी दुनिया अलग है आपकी दुनिया अलग है या वही दुनिया में हम हैं. फिर भी लगता नहीं नहीं बहने तो फिर भी अपने सेंटर पर रहती है उनके कारोबार भी अलग है उनका वायुमंडल अलग है हमको तो बाहर के इस वातावरण में रहकर ये सब कुछ धारण करना मुश्किल है. तो ये जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो तो उसी वायुमंडल में रहते हैं वो भी गृहस्थ में है वो भी संस्था के पास रेगुलर आते हुए भी अपने अपने कारोबार को संभालते हुए चल रहे हैं तो उनके जीवन को देखकर उनके अनुभव सुनकर भी आपको बहुत प्रेरणाएं मिलेंगी. तो फिर रोज के रूप से अपने लाइफ में एवरी डे जो हमें वो आध्यात्मिक ज्ञान की मुरली से होमवर्क मिलता जाएगा डे टू डे लेवल पर कि आज सारे दिन में आपको क्या सोचना है क्या बोलना है किस रूप से व्यवहार करना है डे टू डे लेवल पर कुछ न कुछ एक दो बातों को धारण करने का लक्ष्य दिया जाएगा. और उसके लिए राज्यों के द्वारा जो हमें सारे दिन में शक्ति परमात्मा की याद से उसके साथ के अनुभव से अंदर में बल मिलता जाता है तो वो दिशा से ऑटोमेटिकली ये चीजें फिर धारण करना सहज होगा. तो विचार जो है वो समझ जो रोज हमको प्राप्त हो रही है उससे सही महसूसता जो फीलिंग्स है अपने प्रति महसूसता अपने जीवन के प्रति महसूसता अपने कार्य के प्रति महसूसता अपने परिवार के सदस्य कार्य जहां कर रहे हैं उसके उनके प्रति महसूसता उसमें भी परिवर्तन आता जाएगा. हर एक के प्रति हमारी महसूसता एक पारिवारिक महसूसता होती जाएगी विश्व को एक परिवार के रूप में हम महसूस करेंगे. तो उससे क्या होगा हमारे कर्मों में उनके साथ हम किस रूप से डील करते हैं उन कर्मों में भी अंतर सकारात्मक रूप में दिखाई देगा. और जैसे हम अपने जीवन में परिवर्तन देखते जाएंगे ना तो क्या होगा हमें अपने में और बल महसूस होगा और आत्मविश्वास महसूस होगा. और हमारे में दूसरे जब परिवर्तन देखते जाएंगे तो क्या होगा उनके मन में भी क्या होगा हमारे प्रति शुभ भावनाएं होंगी. मुझे याद है हमारी दादी जी एक बहुत अच्छा उदाहरण सुनाते हैं कि बहुत वर्ष पहले एक हमारे सेवा केंद्र पर जैसे मैंने कहा कि भाई बहन जो आते हैं वो अपने अपने कारोबार में कोई ना कोई पद पर कारोबार करते हैं और किसी न किसी रूप से अपने कारोबार में रहते हुए भी रोज आध्यात्मिक ज्ञान सुनते हैं. तो एक भाई आए थे जो साइंटिस्ट थे कोई एक गवर्नमेंट की ही बॉडी थी जहां वो हेड के रूप में कारोबार कर रहे थे और एक सप्ताह हुआ था वो कोर्स उसने उन्होंने कंप्लीट किया था, बस कोर्स अभी शायद कंप्लीट हुआ ही था और रेगुलर जो सेशन थे उन्होंने आरंभ किए थे मुरली सुनना। तो उनके ऑफिस से दो तीन लोग आए, तो जैसे सेंटर पर आए उन्होंने बहन को रिसेप्शन में पूछा कि फलाने जो है हमारे बॉस हैं तो वो यहाँ आते हैं। तो बहन ने नाम सुनते कहा हाँ हाँ वो अभी एक सप्ताह से कोर्स कर रहे हैं। तो कहा हम उनके ही डिपार्टमेंट में ऐसे वर्क करते हैं। तो बहन को लगा कि अच्छा है, उनको भी प्रेरणा मिली होगी मेडिटेशन सीखने के लिए। तो बहन ने कहा अच्छा बैठी और वो उनको सुनाने लगी, बहन परिचय देने लगी। तो 5-10 मिनट के बाद बहन को लगा कि इनको कुछ ऐसे सुनने का तो कोई इंटरेस्ट नहीं, उस एम से तो नहीं आए हैं। तो उन्होंने बहुत पोलाइटली फिर बहन को रोका और कहा कि बहन जी ये तो अच्छी बातें हैं, हम जरूर समय निकालकर ये सुनने के लिए आएंगे, लेकिन आज जो कार्य के लिए हम आए हैं वो मुझे हमें आपको बताना है। तो कहा बताइए। तो कहा कि ये जो भाई है ना वो एक सप्ताह से यहाँ आ रहे हैं ना, तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप ये देखना कि यहाँ रोज आए। बहन को वंडर लगा कि ये क्यों बोल रहे हैं कि रोज आए। तो वो बहन भाई उन्होंने कहा कि ठीक है आपको अच्छा लगा कि ये भाई आते हैं, लेकिन आप भी रेगुलर आ सकते हैं, हमारा एक कोर्स है आप शुरू कर सकते हैं। तो फिर से वो दोनों भाइयों ने कहा कि नहीं नहीं ये जो बातें हैं फिर हम बाद में आकर आपसे सुनेंगे, लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा कि ये रोज आए। तो बहन ने कहा कि रोज ये व्यक्ति अगर आएंगे तो इससे आपको क्या मदद मिलती। तो कहा नहीं बहन जी आप नहीं जानते, ये व्यक्ति हमारे डिपार्टमेंट के हेड हैं, माना वो हमारे बॉस हैं। ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, इनका दिल भी बहुत अच्छा है, उनको हर एक के प्रति बहुत शुभ भावनाएं रहती है और बहुत मदद करते हैं, बहुत अनुभवी है, बहुत वर्षों से उन्होंने इस डिपार्टमेंट में काम किया और उनके प्रति सबका बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन इनमें क्रोध बहुत है, बहुत गुस्सा करते हैं। इसलिए जैसे वो हमारे कंपनी में या हमारे डिपार्टमेंट में आते हैं उन्होंने कदम अंदर रखा और हम सब एकदम भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी बात उनको ठीक नहीं लगी, उनके ऑफिस से अगर बाहर प्यून ने आकर कहा कि फलाने को बुला रहे हैं तो माना बहुत मुश्किल होगा। वो व्यक्ति को अंदर जाना और फिर वहां से बाहर निकलना, उनका चेहरा देखने से ही हमको इतना डर लगता है। तो हमें कुछ भी उनको कहना है या उनसे कोई मदद लेनी भी है तो हमें बहुत डर लगता है, लेकिन वो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं तो हमें रिस्पेक्ट भी है, लेकिन उनके साथ काम करना बहुत डिफिकल्ट लगता है। लेकिन बहन जी हमने देखा कि करीब 4-5 दिन से धीरे धीरे उनके गुस्से में परिवर्तन आया है, वो गुस्सा नहीं कर रहे इतना। और कहा कि 2 दिन पहले फिर हमने इनके ड्राइवर से पूछा कि साहब कुछ कर रहे हैं, कुछ चेंज हुआ है, क्यों साहब को गुस्सा नहीं आता है इतना। तो ड्राइवर ने कहा हाँ पहले मुझे भी बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन अभी 3-4 दिन से ना वो ब्रह्मा कुमारी उसके वो मेडिटेशन सेंटर में जा रहे हैं तो वो गुस्सा नहीं कर रहे हैं अभी। तो हमें लगता है कि एक सप्ताह का आपका कोर्स है ना, हमको बताया गया प्लीज आप कुछ भी करना लेकिन इनको रोज यहाँ आना, ऐसा ना हो जाए कि एक सप्ताह के बाद ये आना बंद कर दे क्योंकि फिर से नहीं तो वो गुस्सा आरंभ कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि कई बार हमारे जीवन के जो परिवर्तन हैं उससे हमारे आसपास हमारे परिवार, हमारे बच्चों को, हमारे भाई बहनों को, हमारे पति को, पत्नी को, हमारे और भी परिवार के जो सदस्य हैं उनको मदद तो मिलती है लेकिन परिवर्तन की प्रेरणा भी बहुत मिलती है। और जहां हम कारोबार करते वहां भी जैसे हमारे स्वभाव में और सकारात्मकता आती जाती है तो उनको भी प्रैक्टिकल अपने जीवन में और आगे बढ़ाने की जो हमारी शुभ भावना है उसको वो स्वीकार कर सकते हैं। तो इसलिए ये बेनिफिट जो है वो इमीडिएट दिखाई देता है, तो वो जो बेनिफिट है वो आपको और इंस्पायर करेगा, वो और आपको प्रेरणा देगा, तो आपके कर्म औरों के लिए भी प्रेरणादायक हो जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि इसको एक जीवन शैली के रूप में हमें स्थायी रखना है। आज हमारे अंदर वो दृढ़ता है, प्रेरणा है, हम सेंटर पर जाएंगे, शायद वहां भी रेगुलर जाएंगे, हमें अच्छा लगेगा, लेकिन फिर थोड़े समय के बाद फिर से क्या हो जाएगा। कोई भी चीज को स्थायी लाने में अंदर से जो खुशी और शक्ति चाहिए उसमें आसपास के, क्योंकि 1 घंटा आप सेंटर पर जाएंगे, आधा घंटा जाएंगे, लेकिन फिर वापस आपको जो कारोबार का वायुमंडल मिलेगा, जो परिस्थितियां वहां सामने आएगी, उसमें कहां ना कहां कुछ ना कुछ बातें ऊपर नीचे होती रहेंगी। उन चीजों का जब हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है तो हमारी अपनी स्व उन्नति के लिए जो प्रेरणा है, जो अंदर की दृढ़ता है वो कम होती जाती है, क्योंकि ये चीज जो है वो हमारे स्व उन्नति के लिए। तो क्या हो जाता है, हमने अपने लाइफ में हर एक चीज को महत्व दिया, टाइम हर एक चीज के लिए, लेकिन ये चीज का टाइम हमने कभी भी इसको महत्व नहीं समझा। लेकिन सारे दिन में जहां आपको शक्ति प्राप्त हो रही है वो चीज को, वो समय को अगर आपने निकाल दिया और बाकी सारा दिन में, तो आपको शक्ति क्या करनी है? प्रयोग करनी है, यूज करनी है. तो क्या हो जाएगा फिर धीरे धीरे? फिर आपने चार्ज तो किया ही नहीं, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? फिर से वो जो प्रश्न है ना कि क्या करें, होता नहीं है, अच्छे लोग के कर नहीं सकते हैं, आज का समय ऐसा है, ये सब प्रैक्टिकल नहीं है. माउंट आबू में तो बहुत अच्छा लग रहा था, वहां ये सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ तो प्रैक्टिकल है नहीं. सेंटर्स पर जो भाई बहन जाते हैं उनका भी कितना उन्होंने किया होगा, वहां एक घंटे में तो सब कुछ समझ में आता है, लेकिन फिर प्रैक्टिकल नहीं. तो ऊर्जा हमारी कम होने की वजह से फिर इसको जीवन शैली बनाने का जो उमंग उत्साह है ना, वो भी कम हो जाए. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इसका महत्व हम महसूस करें. जो चीज का महत्व महसूस करते हैं ना, उसी को हम धारण करते हैं. और इसका महत्व महसूस करते हुए परमात्मा के साथ का अनुभव जरूरी है, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है. और अब हमने जो संबंध के रूप से उसको याद किया है, समझा है, तो अब हम जानते हैं कि वो सर्वशक्तिवान है, लेकिन वो मेरा कौन है? पिता है. और सबसे महत्वपूर्ण है कि वो मेरा है. नहीं? तो जो अपना है उस पर क्या होगा? क्या होगा? अधिकार है. जैसे अगर कोई, हम देखते हैं परिवार में कहां कोई बच्चों की आपस में लड़ाई होती है, तो जो हमारा बच्चा होता है उसको हम थोड़ा डांट सकते हैं. नहीं, दूसरों को तो हम नहीं बोलते, हम कहते हैं ये हमारा बच्चा है इसलिए इसको हमने बोल दिया. मेरा है ना, तो मैं उसको बोल सकता हूं. लेकिन अब तो हमने समझा कि मेरा कौन है, परमात्मा. बच्चा भी कौन है? उसका बच्चा है, उसको भी हम डांट तो नहीं सकते हैं, लेकिन परमात्मा जरूर मेरा है, तो उस पर हमारा अधिकार है. तो उसके साथ जो ये समीपता का संबंध हमारा जुड़ जाता है, योगी जीवन माना ईश्वर के साथ का अनुभव नेचुरल स्वभाव बन जाए, जहां वो पिता के रूप में एक हर संबंध की वो समीपता का हम अनुभव करें. इसलिए कहा भी गया भक्ति में, हमने कहा भी कि त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु त्वमेव सखा त्वमेव, हर संबंध. लेकिन वो हर संबंध की समीपता का जो सुख है, जो रस है, वो हम अनुभव करते हैं. तो जब अंदर में ईश्वर के प्रति सत्यता महसूस होती है ना, जो सच्चाई होगी, हर बात हम दिल की जो भी बात है उसके साथ शेयर करते हैं. सारे दिन में जो जो हमारे विचार चल रहे हैं वो उनके साथ शेयर करते हैं. जितनी वो सत्यता होती है तो क्या होगा, हमारे बोल में औरों के प्रति सकारात्मकता और मधुरता बढ़ती जाती. ईश्वर के साथ की सत्यता हमारे शब्दों में मधुरता और सकारात्मकता का विकास करती है. फिर हम देखते हैं कि हमारे विचार, जितना ईश्वर की याद रहती है ना, तो हमारे मन के विचारों में नेगेटिव और व्यर्थ समाप्त होता जाता है, क्योंकि ईश्वर की याद में बहुत मनोबल शक्ति जमा होती है. वो शुद्ध और समर्थ विचार चलते हैं. तो जब मन में शुद्ध विचार चल रहे हैं, तो उस समय नकारात्मकता और व्यर्थ नहीं चल सकते हैं. तो हमारे मन की एकाग्रता बढ़ती जाती है. जितना हम कॉन्सेंट्रेट होते जाते हैं, उतना क्या होता है, हमारा मन शांत हो गया, स्थिर हो गया, ठहराव आता है. तो क्या होगा, उसमें समझ, स्पष्टता आती जाती है. इस समय हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हमारे सामने परिस्थिति है, उसका क्या मुझे उत्तर देना है, कैसे इसका निवारण करना है. तो वो स्पष्टता जो है वो सहज आती जाती. जहां हमारी बुद्धि बहुत सारी बातों में है, व्यर्थ चिंता ये वो, तो क्या है, स्पष्टता नहीं. इसलिए मन में बहुत सारे विचार होने की वजह से कंफ्यूज होते हैं. आप एक कमरे में आपने एंटर किया और 10 लोग एक साथ कुछ बोल रहे हैं, आपको समझ में आएगा? समझ में आएगा कुछ नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं. लेकिन कई बार आप देखो आपके मन में कितने सारे विचार एक साथ चल रहे हैं, तो स्पष्टता नहीं रहती. तो इसलिए हम देखते हैं एकाग्रता से फिर स्पष्टता, कि हमें इस समय क्या करना है, क्या सोचना है, कैसे करना है, क्या निर्णय लेना है, वो समझ मिलती जाती. जितना हम अपने कर्मों में परमात्मा की याद और साथ का अनुभव करते हैं, कि जो हम कार्य कर रहे हैं करण करावनहार वो है ना, उसने मुझे ये कार्य दिया, उसने मुझे ये रोल दिया है, तो वो मुझसे कार्य कराएगा. जैसे कोई ड्रामा है तो उसमें एक्टर किस रूप से अपने डायलॉग्स बोलेगा, उसको क्या फीलिंग उस समय क्रिएट करना है, उसको क्या बोलना है, क्या स्टेप लेना है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, कौन डिसाइड करता है? डायरेक्टर. नहीं, तो वो अपनी भावनाएं, अपने विचार डायरेक्टर को बता सकता है कि मुझे ऐसा मैं करूं, ऐसा कहूं, लेकिन डिसीशन फाइनल किसका होगा? डायरेक्टर. सो हम जरूर ईश्वर से बातचीत करते हैं, लेकिन वो हमसे कार्य करा रहा है, वो डायरेक्टर है, वो करण करावन हार हमारे साथ है, वो हमसे हर कर्म करा रहा है। और जरूर वो तो ज्ञान का सागर है, शक्ति का भी सागर है, तो वो जब हमसे कार्य कराएगा तो क्या होगा, उस कार्य की रिजल्ट क्या होगी, 100% उसकी रिजल्ट भी वैसी होगी। तो ऑटोमेटिकली ट्रस्टी बन जाएंगे, सहज लगेगा वो कार्य करा रहा है। तो कार्य जो हम कर रहे हैं उसका फल, उसके रिजल्ट के लिए भी कौन जिम्मेवार है, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो मदद कर लेगा, वो शक्ति दे देगा। और फिर हमारे जीवन का जो समय है, हर कदम में हमें कोई ना कोई जो बातें हो रही हैं उसमें कोई बेनिफिट, उसमें जो कल्याण महसूस होता जाएगा। हमारा जीवन बहुत सुंदर है, श्रेष्ठ है, और उसमें हर समय कुछ ना कुछ कल्याण है। जो हम यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान सुनते हैं उससे हमें समझ मिलती है कि समय, जीवन जिसको हम एक्टर के रूप में देखेंगे तो ड्रामा जो है लाइफ का वो कल्याणकारी है। परमात्मा पिता भी कल्याणकारी है, और ड्रामा में इस समय जो समय चल रहा है जहाँ कलयुग के परिवर्तन के लिए ईश्वर आध्यात्मिक ज्ञान और योग के द्वारा हमारा जीवन बदल रहा है, तो ये परिवर्तन का समय बहुत कल्याणकारी समय है। तो इस समय कल्याणकारी है तो हम इस समय को वेस्ट करेंगे? समय कल्याणकारी है, इसमें बहुत बेनिफिट है। एक एक सेकंड में हम अपने जीवन को जितना श्रेष्ठ बनाना चाहें, जितना सफल बनाना चाहें बना सकते हैं। समय बहुत कल्याणकारी है, तो समय का क्या होगा, महत्व महसूस होगा। हम एक भी सेकंड अभी चिंता करने में, नेगेटिव सोचने में, दुखी होने में नहीं गवाएंगे। महत्व है ना समय का। आज तक हमने अपने जीवन के समय का महत्व नहीं बताया, इसलिए हमको लगा क्या करें, परिस्थिति थी ना तो मन में ऐसा अपसेट हो गया, बात एक हुई, एक परिस्थिति, और उसके प्रति चिंता करने में कितना समय बिता दिया, कितना समय बिता दिया, कितना टाइम हमने वेस्ट कर लिया। तो अब हमें जागृति हुई ना, तो अब हमें पता है कि समय कल्याणकारी है, और मेरे साथ कौन है, कल्याणकारी पिता है। तो इसलिए हर सेकंड का महत्व महसूस हुआ, तो अभी हम इस समय को वेस्ट नहीं कर सकेंगे। सबसे अमूल्य खजाना अभी हमारा कौन सा है, समय और संकल्प। अब जैसे समय और संकल्प को आपने अमूल्य समझा, खजाने के रूप में फील किया, उसको आपने अच्छी तरह यूज करना शुरू किया, तो क्या होगा, आपका हर सेकंड और आपका हर थॉट, हर संकल्प अगर सही रूप से यूज होना आरंभ किया तो क्या होगा, क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारे सारे जीवन को ये दिशा जो हम देना चाहते हैं, जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो सहज हो जाते हैं। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है, मैं हमेशा ये कहानी अपने प्रति बहुत मुझे रुचि होती है इसको सुनाने की, आपने सुनी भी होंगी, फिर भी मैं ये जरूर सुनाना चाहूंगी कि आप में से कोई एक ब्रदर, जैसे आप बिजी रहते हैं व्यापार में या अपने वर्क पर, तो ऐसे ये परिवार था जहां पिता जो है वो बहुत बिजी रहते थे, और उनका सेल्स का जॉब था, तो वो हर हफ्ते उसको कहीं ना कहीं 2-3 दिन तो उनको ट्रैवल करना पड़ता था। उनका एक छोटा बच्चा था, 4 साल का होगा, और उसको बहुत रुचि होती थी कि डैडी मेरे साथ समय बिताए, लेकिन डैडी के पास तो टाइम नहीं होता था, रात्रि को लेट आते थे, दूसरे दिन उनको कहीं और ट्रेन या फ्लाइट में जाना है, तो उनके साथ वो समय नहीं बिता पाते थे। लेकिन बच्चे के प्रति प्यार जरूर था, तो कुछ ना कुछ बच्चे के लिए ले आना, खिलौना नया कुछ भी ले आते थे। तो इस बार वो कुछ कोई नया वीडियो गेम या कुछ खिलौना ले आए थे, तो पिता के साथ उस वीडियो गेम को खेलने का उसका बहुत मन था। तो उस दिन उसने मम्मी से पूछा, तो लेट आने वाले थे डैडी, लेकिन उस दिन वो कुछ भी करके जागता रहा। उसने कहा नहीं, आज तो मुझे डैडी के साथ जरूर खेलना है, मुझे डैडी के साथ टाइम बिताना ही। तो जैसे उसके पिताजी आए, वो तो बहुत लेट आए, फिर भी उसने देखा कि बच्चा तो जागृत अवस्था में जाग रहा है, तो कहा बेटा आप सोए नहीं? तो कहा नहीं डैडी, आज आप जो ये लेकर आए ना वीडियो गेम, मेरे साथ आपको खेलना होगा। तो उसने कहा कि, डैडी ने कहा कि आज तो बेटा मुझे थोड़ा और काम है, और मुझे कल सुबह को जल्दी जाना है, मुझे फ्लाइट पकड़नी है। तो कहा नहीं डैडी, आज तो मैं नहीं सोऊंगा। तो पिता को प्यार तो था बच्चे से, लेकिन उसको मालूम था कि आज वो उसके साथ बैठ नहीं सकेगा, तो सोच रहा था कि बच्चे की आंख में नींद तो दिखाई दे रही थी, तो सोचा कि मैं क्या युक्ति रचूं तो बच्चा सो जाए। तो उस दिन का शाम का न्यूज़पेपर उसने देखा, तो उस न्यूज़पेपर में एक बहुत बड़ा मैप था इंडिया का, तो उसमें कुछ पॉलिटिकल कैंपेन के बारे में कुछ था, तो पूरा मैप था भारत का। तो उसने क्या किया कि वो पेपर फाड़ दिया और उस मैप को छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, और फिर वो बच्चे को कहा देखो ये पूरे भारत का नक्शा है। अब बच्चा तो 4 साल का था, तो उसके लिए तो वो नक्शा आदि उसको समझना तो उसके लिए डिफिकल्ट था। तो पिता ने कहा कि देखो ये नक्शा है, उसके अलग अलग टुकड़े हैं, तुमको सबको जोड़ना है, तुम ये जोड़ लो, मैं तब तक रिफ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम खेलते हैं। तो उसको पता था कि बच्चा जो है वो ट्राई करेगा, ये करेगा, उसके लिए डिफिकल्ट होगा, शायद उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, वो सो जाएगा। वो 5 मिनट में पिताजी वापस आए तो उसने देखा ये तो पूरा नक्शा हर एक जगह जो है, एक एक हिस्सा भारत का हर स्थान पर है। तो उसको लगा ये जरूर कुछ किया होगा बच्चे ने, तो उसने देखा, सोचा कि शायद उसकी मम्मी ने उसको मदद की। तो उसकी माँ ने कहा मैंने तो कुछ मदद नहीं की, और बच्चा तो बहुत अपने अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। तो उसने बच्चे को पूछा कि तुमने कैसे किया, तो बोला बस मैंने कर लिया। तो बोला नहीं तुम बताओ तुमने कैसे किया। तो कहा डैडी आपने देखा नहीं, लेकिन जब आप पेपर फाड़ रहे थे ना, तो एक बाजू तो भारत का नक्शा था, लेकिन उसके दूसरे बाजू व्यक्ति का चेहरा था। व्यक्ति को ठीक कर लिया तो भारत ठीक हो गया, भारत तो क्या विश्व भी ठीक होगा, नहीं? तो हम सबका अपने जीवन का परिवर्तन विश्व परिवर्तन में सहयोग देगा, नहीं? तो ईश्वर ने हमको यहाँ बुलाया है, और ईश्वर जो विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहा है उसमें हम अपने स्व परिवर्तन से मददगार बन रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप अपने अंदर जो भी सुंदर प्रेरणाएं यहाँ प्राप्त कर रहे हैं वो ईश्वर की याद से और ईश्वर की पदम गुणा मदद से वो आपके जीवन में सदा के लिए एक सकारात्मक जीवन शैली का स्वरूप ले लेगी। ओम शांति।